भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान जारी। मतदान के लिए लोगों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, वीवीआईपी से लेकर के आम लोग कर रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल। गांधीनगर सीट से आज पर्चा भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल सुबह से शाम तक रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। दूसरे चरण के लिए आज प्रचार में जुटेंगे प्रधानमंत्री। अमरोहा, दमोह और वर्धा में उनकी है रैली। ईरान में कई धमाकों की खबर, अमेरिकी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट। इसराइल ने दागी मिसाइलें। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने दी थी जवाबी कार्रवाई की धमकी। तेहरान से सभी फ्लाइट रद्द। खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। दो जगहों से हिंसा की खबर आई है। कूच बिहार के चांदमारी इलाके में पथराव और तूफानगंज में बीजेपी और टीएमसी में झड़प। हम दो कार्यकर्ता जो हैं इसमें घायल होने की भी बात है, ये बीजेपी ने कहा है। टीएमसी ने भी बीजेपी पे हमले का आरोप लगाया। हम अपने सहयोगी सौरभ के पास चल सकते हैं। सौरभ बताइए क्या ताज़ा जानकारी है।
देखिए, कूच बिहार में ये डर जरूर था कि हिंसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तैनात कर दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ जगहों से पथराव की खबर आ रहा है एक इलाका से। एक दूसरे जगह से खबर ये आ रहा है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर के सामने से बॉम्ब मिला है, और वो बीजेपी का कार्यकर्ता का आरोप है कि उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और बम रखने की आरोप है। दूसरी जगह से किसी और का एक आरोप था कि पथराव होने का। टीएमसी का भी काफ़ी सारे आरोप आया है बीजेपी के खिलाफ। उसमें टीएमसी का एक आरोप ये आया है कि उनके जो एक कार्यकर्ता है उनको चोट आए हैं, और ये बीजेपी के इस पर हुआ है।
तीसरे विश्व युद्ध का क्या खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इसराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल ने कई मिसाइलें जो है वो ईरान पे दागी हैं। ईरान से सभी फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। उमाशंकर के पास सीधे चलते हैं ताज़ा जानकारी के लिए। उमाशंकर बताइए क्या हालात हैं अभी।
जी देखिए, 13 अप्रैल को जब ईरान ने इसराइल पे 330 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल से हमला किया था, उसके बाद से इस बात की आशंका थी कि इसराइल जो है पलटवार करेगा, और इसराइल की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए जा रहे थे। बीती रात जो है ईरान के कई इलाकों में तेज धमाके सुनाई दिए गए, और उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा गया कि ये इसराइल की तरफ से किया गया हमला है। हालांकि इसराइल ने अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकलकर ईरान से सामने आ रही है उसके मुताबिक कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो भी प्रोजेक्टाइल्स आए वो उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया, और कोई भी जो प्रोजेक्टाइल्स है वो जमीन पे नहीं आया, जमीन पे कोई धमाका नहीं हुआ। इस तरह की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की जा रही है, जहां पे उनके सैन्य ठिकानों को खासतौर पर इस्फहान, जहां पर की जो कि हमले का जो खास निशाना रहा है, वहां की तस्वीर भी जारी की गई है कि वहां के सैन्य अड्डे के आसपास सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये बात भी है, एक डाउन प्ले करने की भी कोशिश मानी जा है, ताकि ईरान पर दोबारा से दबाव न हो कि वो इसराइल के हमले का जवाब दे, क्योंकि एक चेन रिएक्शन है जो लगातार चलता रहेगा। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका को सूचित कर दिया था, और यह भी कहा था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, और इसी बात की तस्दीक जो है वो ईरान की तरफ से की जा रही है कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने जो है वो सुरक्षित है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो 13 अप्रैल के हमले के बाद इसराइल पर जो दबाव था उसका ये नतीजा है कि इस तरह का हमला किया गया है। लेकिन जिस तरह से ज्यादा नुकसान की खबर नहीं आ रही, उससे ये लगता है कि ये सब कुछ अमेरिका की मध्यस्थता में, जिस तरीके से इसराइल पर वो दबाव बना रहा था, ऐसे हुआ है कि ईरान इसराइल का जो की जो नाक है वो भी ऊंची रह जाए और ईरान को ज्यादा नुकसान भी न पहुंचे।